सुबह की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन कमरे के भीतर का माहौल बेहद भारी था। बिस्तर पर फैली चादरें बिखरी हुई थी, मानो रात भर वहां बेचैनी और तनाव का तूफान चला हो। विक्रम तकिए से टिककर आंखें मूंदकर लेटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसकी भौहें तनी हुई थी और होंठ कसकर बंद। उसने करवट ली और तभी उसकी नज़र पास लेटी मोनी पर पड़ी। मोनी सिर्फ चादर में लिपटी हुई थी, उसके गाल भीगे हुए थे और आंखें लाल। वो रो रही थी, या यूं कहें कि रोने का पूरा नाटक कर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आवाज़ धीमे धीमे सिसकियों में निकल रही थी। विक्रम, उसने गले में अटकते शब्दों के साथ कहा, तुमने कल मेरे साथ बहुत गलत किया, अब मैं क्या करूंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो दोनों हाथों से चेहरा ढककर और जोर जोर से रोने लगी, जैसे पूरा दर्द सिर्फ उसके हिस्से में आ गया हो। विक्रम ने उसे कुछ पल तक खामोशी से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा तैर रहा था, पर उसने पहले खुद को संभाला। उसने धीरे धीरे उठकर बैठते हुए चादर को कंधों पर डाला। मोनी, उसकी आवाज भारी थी, ड्रामा बंद करो। मोनी ने चेहरा उठाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी चालाकी भी झलक रही थी। ड्रामा, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, तुम्हें लगता है मेरा दर्द ड्रामा है? कल रात जो हुआ वो क्या था? तुम्हें समझ नहीं आता कि अब मैं कैसे जीऊंगी? विक्रम का सब्र टूट गया। वो झटके से उसकी ओर झुका और उसका चेहरा अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया। बस, उसने तेज स्वर में कहा, ये गेम्स मेरे साथ मत खेलना, समझी? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर कल रात सच में कुछ हुआ भी है, वो एक पल रुका, उसकी आंखों में आग थी, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनी का चेहरा उसकी पकड़ में सख्त हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? विक्रम ने उसकी ओर झुककर कहा, मुझे सिर्फ रहना चाहिए, मेरी शादी उसी से होगी, सिर्फ उसी से, और अगर तुम मेरे बीच आईं तो याद रखना मोनी, उसने उसकी ठुड्डी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये कहकर उसने उसका चेहरा झटकते हुए छोड़ दिया। मोनी का सिर तकिए से टकरा गया और वो वहीं बैठी रह गई। विक्रम उठ खड़ा हुआ, उसने बिस्तर के पास रखी शर्ट उठाई, पहनी और शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक किए। उसका चेहरा सख्त था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। तुम्हारे ये रोने धोने, तुम्हारे ये झूठे किस्से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर घड़ी उठाई, हाथ में पहनी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। याद रखना मोनी, मेरी मंजिल सिर्फ रहना है। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। मोनी वहीं बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि गुस्सा टपक रहा था। उसने चादर को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए बोली, ठीक है विक्रम, तुम सोचते हो कि तुम बच निकलोगे? ये आदमी मेरे हाथ में आने वाला नहीं है, मुझे बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। उसने तकिए को जोर से पटक दिया और उठकर कमरे में टहलने लगी। इतनी बड़ी बात को भी इतना छोटा बनाकर चला गया, खुद को समझता क्या है? RC4, उसने गुस्से में बुरी तरह गालियां दी। मुझे छोड़कर किसी और से शादी करेगा, देखना अब मैं तेरे होश कैसे ठिकाने लगाती हूँ। इतने में उसका फोन बजा, स्क्रीन पर माँ लिखा था। मोनी ने गुस्से से भरे स्वर को दबाकर फोन उठाया। हेलो माँ, फोन के उस पार से उसकी माँ की आवाज आई। हाँ बेटा, तो बता, तूने जो प्लान पकाया था वो सब ठीक चल रहा है ना? विक्रम तो कुछ बोला नहीं? मोनी की आंखों में चालाकी तैर गई, उसने आह भरते हुए कहा, माँ वो बंदा बहुत चालाक निकला, इतनी बड़ी बात को भी मामूली बनाकर निकल गया, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। माँ की आवाज और गंभीर हो गई, तो इसका मतलब है हमें और बड़ा खेल खेलना होगा। अगर विक्रम सच में रैना से शादी करने पर अड़ा हुआ है तो हमें ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि वो खुद हमारे जाल में फंस जाए। मोनी की आंखों में चमक आ गई। हाँ माँ, अब की बार खेल इतना बड़ा होगा कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। फोन काटते ही मोनी मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें प्यार नहीं सिर्फ साजिश छिपी थी।